नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। असम की 126, केरलम की 140 सीटों और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। असम में 85% से अधिक मतदान हुआ, केरलम में 78% से अधिक वोट डाले गए, पुदुचेरी में लगभग 89% मतदान हुआ। यह पुदुचेरी विधानसभा में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। उधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए नाम वापस लेने और दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन था। तमिलनाडु में भी आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को होगी। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर एल मुरुगन, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई एनडीए गठबंधन के लिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। एआईएडीएमके नेता एडापड्डी ने पलानास्वामी, डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन, उदयनिधि स्टैलिन, प्रेमलता विजयकांत, डॉक्टर अंबुमणि रामदास, कनीमोजी और कई अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया, आसनसोल और सूरी में परिवर्तन संकल्प रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ बदलाव का संकेत है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर मां माटी मनुष्य के नारे को त्यागने का आरोप लगाया।
हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए।
वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के जरिए मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक नाम हटाकर बंगाल पर कब्जा करने के भारतीय जनता पार्टी के कथित प्रयासों के बावजूद उनकी पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। पश्चिम एशिया में 2 सप्ताह का युद्ध विराम आज काफी हद तक कायम रहा। हालांकि संघर्ष के मौजूदा चरण में लेबनान पर इसराइल के सबसे बड़े हमलों के बाद तनाव बढ़ गया। इसराइली हवाई हमलों में बेरूत और दक्षिणी लेबनान के घनी आबादी वाले इलाकों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई है। ईरान का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है, जबकि अमरीका और इसराइल का कहना है कि ये युद्ध विराम केवल अमरीका ईरान के बीच सीधे टकराव पर लागू होता है। हिजबुल्ला ने भी इसराइली सीमावर्ती समुदायों की ओर रॉकेट दागे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ पूर्ण समझौता होने तक अमरीका की सेनाएं तैनात रहेंगी। औषधि विभाग के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश टीएल ने कहा कि देश में आवश्यक औषधि सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट पर नई दिल्ली में श्री सत्य प्रकाश ने कहा कि सरकार ने औषधि उद्योग को सहायता देने और आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 40 पेट्रो रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पोत ग्रीन आशा LPG लेकर आज नवी मुंबई पहुंचा। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45 गीगावाट की सर्वाधिक वार्षिक और सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया में कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दोपहर नई दिल्ली में पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। पोषण पखवाड़ा का विषय है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा कि पोषण पखवाड़ा का मकसद पोषण को जन आंदोलन बनाना है। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित 10 पदक जीते। 48 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा, 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार, 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जैस्मीन ने 57 किलोग्राम और आफिया पठान को 80 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में रजत पदक मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।